كده. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो आज हमने क्लास का टाइम काफ़ी चेंज कर दिया है। ये हमारा जो टाइम है, ये विंटर तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभी तो काफ़ी गर्मी है, बल्कि आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी यहाँ पर, तो विंटर टाइम तो उसको नहीं कह सकते। लेकिन नमाजों के टाइम जो है वो बहरहाल चेंज होते ही रहते हैं, चाहे मौसम बदले ना बदले। तो चूंकि यहाँ पे नमाजों का टाइम काफ़ी नीचे चला गया है, तो इस वजह से क्लास जो है वो मज़ीद, इसको हम उससे नीचे नहीं ले जा सकते क्योंकि फिर लोगों के दफ्तर से आने का वक्त जो है वो उससे क्लैश करेगा। तो इस वजह से ऊपर बढ़ाना पड़ता है कि इशा की नमाज़ जब यहाँ पे मुकम्मल हो जाए तो इसके बाद फिर क्लास शुरू करी जा सके। अब इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में रहने वालों को, खुसूसन इंडिया वालों को होता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी रात को देर हो चुकी होती है, तकरीबन 2.5 घंटे आगे टाइम है इंडिया का। तो हम साथियों से माजरत के साथ, लेकिन अभी वहाँ पे ज़्यादा देर है, कुछ अरसे के बाद भी टाइम हम यहाँ पर भी नीचे लेकर के आएंगे। तो अभी 8:30 बजे शाम का है, और फिर ये 8:15 हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर 8 बजे शाम का टाइम हो जाएगा, फिर इतना देर नहीं रहेगी इंशाल्लाह। बहरहाल माजरत के साथ, तो आज क्लास क्लास हम शुरू करते हैं। ये जो आयात पढ़ रहे थे इन्हीं के मआरिफ व मसाइल पर हम थे पिछली क्लास में, पेज नंबर 143 के ऊपर, मारफुल कुरान की जिल्द नंबर 5 में सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो आखिरी बात पढ़ी थी कि जब वो क्या कहते हैं काफिला निकला यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को लेकर के, तो बस शहर से बाहर ही निकला था, यानी मिस्र के शहर से बाहर ही निकला था, तो याकूब अलैहिस्सलाम को उसकी खुशबू आनी शुरू हो गई। और फिर उन्होंने बात कही कि अगर तुम मुझे बेवकूफ ना कहो तो मैं तुम्हें बतलाऊं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो ये हमने डिस्कस काफी कर लिया था कि अल्लाह ताला के कुदरत में मुआजा होता है, नबी के अपने हाथ में मुआजा नहीं होता कि जब वो चाहे तो वो कोई काम कर दे जो कि खिलाफे आदत हो। इंसान वही काम कर सकता है जो कि आदतन उसके लिए मुमकिन हो, ठीक है। यानी जो अल्लाह ताला ने ना उसकी कुदरत में दिया है, इंसान की कुदरत में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ें दी हैं, कि जैसे हम हाथ से जो है वो चीज़ों को पकड़ सकते हैं और उठा सकते हैं एक सर्टन वेट तक, उससे ज़्यादा वेट हो जाए तो हम नहीं उठा सकते बगैर किसी क्रेन वगैरह के, लेकिन हम अपने हाथ से कुछ ना कुछ वेट तो उठा सकते हैं ना। तो ये कुदरत अल्लाह ताला ने हमें दी है, लेकिन उंगली के इशारे से राइट हम किसी छोटे से छोटे वेट को भी नहीं उठा सकते ना, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमें जो कुदरत दी है उतना हम कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ की कुदरत नहीं दी है उतना हम नहीं कर सकते। तो जो हम नहीं कर सकते ना, तो फिर वो अल्लाह ताला अपनी मर्जी से करते हैं, तो उसको फिर मुख्तलिफ किस्म के नाम दिए जाते हैं, ठीक है। यानी हमारी कुदरत से बाहर जो चीज़ होती है ना, हमारे असबाब से, हमारे मीन से जो बाहर काम होते हैं, जो एक्स आउटसाइड ऑफ आर कुदरत और आवर कैपेबिलिटीज जो काम होते हैं, तो अगर अल्लाह ताला उनको करने का फैसला करते हैं ना, तो फिर उनको मुख्तलिफ टर्म से पुकारा जाता है। अगर नबी से करवाएं या बल्कि नबी के हाथ पर करवाएं, ठीक है, तो उसको मौजजा कहते हैं। वली के हाथ पर करवाएं तो उसको करामत कहते हैं। फासिक और फाजर के हाथ पर करवाएं तो उसको इस्तिदराज कहते हैं। और चौथी चीज जो कि माशाल्लाह हमारे एक नौजवान, बल्कि नौ नौजवान साथी ने, जिनको हम बच्चों में भी शुमार करते हैं, उन्होंने सवाल किया था, बहुत अच्छा सवाल था, और मैंने उसके जवाब से माजरत कर ली थी क्लास में, अगर किसी को याद हो। उनको खुद ही याद है कि आपने क्या सवाल किया था, क्लास में तो आप हैं राइट, आपने सवाल किया था। बहरहाल वक्त की कमी की वजह से आपने सवाल ये किया था कि अगर कोई खिलाफ आदत काम हो जो कि ना नबी के हाथ पर हो, ना वली के हाथ पर हो, ना किसी फासिक फाजर काफिर के हाथ पर हो, बल्कि किसी आम से मुसलमान से रिलेटेड वो काम हो, तो फिर उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हमने उसका जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसके चंद घंटों के बाद जो है वो अल्लाह ताला ने दिल में वो बात डाल दी थी, जो कि बड़ी कॉमन सी और नॉर्मल सी बात थी, बस क्लास में उसका जवाब नहीं आ रहा था जहन में, ऐसा भी होता है। तो वो जो है ना, वो ये होता है, उसको कहते हैं, यानी जो किसी नॉर्मल आदमी की जिंदगी में या किसी औरत की जिंदगी में कोई ऐसा खिलाफ आदत काम हो जाए, तो उसको जो है ना वो उस आदमी से या उस औरत से मंसूब नहीं करते। ठीक है, उसको आदमी या औरत जिसके हाथ पे या बच्चा या जो भी हो उसके उसके ऊपर उससे मंसूब नहीं करते हैं, उससे कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बल्कि उसको जो है ना वो कह देते हैं अल्लाह ताला की कुदरत। उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? अल्लाह ताला की कुदरत, बस। ठीक है, नबी के हाथ पर हो तो उसको अल्लाह ताला की कुदरत तो वो होती ही है, लेकिन उसको मौजजा कहा जाता है। वली करामत, काफिर फासिक फाजिर इस्तिदराज, लेकिन एक आम से आदमी की जिंदगी में कोई इस किस्म की चीज हो जाए, ठीक है ना, कि जैसे वो हवा में उड़ गया राइट, या कुछ इस किस्म का ऐसा अनयूजुअल किस्म की चीज हो गई, तो उसको कह देते हैं अल्लाह की कुदरत है भाई, अल्लाह ताला ने ऐसा काम कर दिया। ठीक है, तो उस बंदे को किसी किस्म का क्रेडिट नहीं देते हैं। ठीक है, इत्तेफाक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है ना, इत्तेफाक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने जो फरमाया, कालू तल्लाही इन्नक लफी ज़लालिकल कदीम, के घर वालों ने यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम की ये बात सुन करके कि तुम मुझे बेवकूफ ना कहो तो मैं एक बात कहूँ, तो उन्होंने जवाब किया दिया, उन्होंने कहा तल्लाही, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम वाव से भी खाई जाती है, वल्लाही भी कहा जाता है, और तल्लाही भी अरबी जुबान में कसम खाने का तरीका होता है। इन्नक लफी ज़लालिकल कदीम, यानी हाजरीन मजलिस ने याकूब अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा कि बखुदा आपने तो अपने उसी पुराने गलत आप तो अपने उसी पुराने गलत ख्याल में मुब्तला हैं कि यूसुफ जिंदा हैं और वो फिर मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम खुलासे तफसीर में भी बात कर चुके हैं, शायद तर्जुमे में भी बात कर चुके थे, कि इस किस्म की बात जो है ना वो किसी वक्त के नबी के साथ करना कि आप तो इन्नका लफी गुलालिकल कदीम राइट, किसी नबी के साथ कर देना ऐसी बात, ये किसी के बस में नहीं होता। अगर कोई कर दे तो वो तो स्ट्रेट अवे काफिर हो जाएगा राइट, कि आप तो पुरानी गुमराही में हैं राइट, लेकिन लेकिन घर वाले जो होते हैं ना वो एक अलग मखलूक होते हैं, खुसूसन बेगम साहिबा जो होती है ना वो बेगम होती है, उनको किसी चीज का गम नहीं होता। ठीक है, तो वो जो मुंह में आता है बोल देती हैं, और इवन वक्त के जो नबी होते हैं ना वो भी चुप कर जाते हैं उनके सामने, वो भी मुस्कुरा के खामोश हो जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं, हत्ता के कोई बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम चीज हो जाए तो फिर तो इवन नबियों ने भी कुछ ना कुछ एक्शन लिया है, अदरवाइज रोजमर्रा का मामूल है, चलता है। ठीक है, तो हमारे लिए चूंकि जो अम्बिया हैं वो तो मिशल राह है ना, और हम हमें उनकी इतबा करनी है, अल्लाह ताला का भी हुक्म है, और हमारी खैर भी इसी के अंदर है कि हम नबियों की इतबा करें, तो हमें भी जो है ना वो ऐसा हौसला अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। ठीक है, कि चलता है चलता है चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, एक कान से सुने दूसरा कान अल्लाह ताला ने किस लिए दिया है? ऐसी बातों को निकाल देने के लिए। ठीक है ना, हम जो है ना वो बीवियों की बात को तो एक कान से सुनकर दूसरे कानों से नहीं निकालते, लेकिन अपने मशाइख की बातों को, उलमा की बातों को, या जो हमारे रूहानी तरक्की के लिए, बल्कि अक्सर अब तो ये हाल हुआ है कि इवन दुनियावी तरक्की के लिए भी जो बातें होती हैं ना, सही मानों में दुनियावी तरक्की के लिए, उनको दोनों कानों का खूब इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। एक कान से सुनो, दूसरे कान से उड़ा दो, दूसरे कान से निकाल दो भाई। यही तुम काम जो है जो अपने मशाइख के साथ करते हो राइट, अपने टीचर्स के साथ करते हो, अपने खैर ख्वाहों के साथ करते हो, वही काम बीवी के साथ ही कर सकते। बीवी के साथ भी ये करो भाई, या बीवी के साथ ही करो, करना तो चाहिए कि बीवी के साथ ही करो ये वाला काम, बीवी के साथ भी नहीं करो बल्कि बीवी के साथ ही ये वाला काम करो, और दूसरी तरफ पे अटेंशन करो, दूसरी तरफ जो है ना एक कान से सुनो, दिमाग में अच्छे से उसको प्रोसेस करो, सोचो उसके ऊपर, गौर करो, तफक्कुर करो, तदब्बुर करो कुरान के ऊपर। अफला ये तदब्बरून अल कुरान, कुरान को एक कान से सुनकर दूसरे कान से मत निकाल दो। कुरान की तफसीर को, कुरान की तशरीह को, कुरान की एप्लीकेशन को अपनी जिंदगियों के अंदर एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकाल दो। ठीक है, ये काम करो बेगम साहब के साथ, ठीक है ना, जब वो इस किस्म की कोई बात करें। हाँ, अगर वो कोई अच्छा मशवरा दें तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि बीवी के अच्छे मशवरे को भी जो है वो तवज्जो से सुनो और उसके ऊपर भी अमल करो। नबी अलैहिस्सलाम ने बीवी के अच्छे मशवरे के ऊपर भी अमल किया, लेकिन उल्टी सीधी जो सुनाती रहती हैं कि भाई दूसरा कान किस काम के लिए अल्लाह ताला ने दिया है। ठीक है, तो याकूब अलैहिस्सलाम की भी मिसाल सामने है और हमारे अपने नबी अलैहिस्सलाम की भी मिसाल हमारे सामने है। अब तक तो हमें पता चल ही चुकी होगी कैसे किया था आपसे ने। ठीक है, तो क्या लिखा है आपने, वाई आर वी रीडिंग फ्रॉम हियर, डिड वी नॉट रीड दिस, नो वी डिड नॉट रीड दिस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था वहां पे क्लास तफसीर में। फलम्मा अन जा अल बशीरू, यानी जब ये बशारत देने वाला कनान पहुंचा और तमीसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया तो फौरन उनकी बीनाई उड़ कर आई, यानी वापस आ गई, लौट कर आ गई। बशारत देने वाला वही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाई यहूदा था जो इनका कुर्ता मिस्र से लाया था। ठीक है, तो ये भी पहले बात खुलासे तफसीर में हो चुकी थी कि उसने अपनी गलती के ऊपर माफी तो मांग ली थी, लेकिन फिर भी कफारा अदा करने का इनको 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 फिक्र थी कफारा अदा करने की। तो कफारा अदा करने के लिए इन्होंने कहा कि मैं ही जो है ना वो कमीज लेकर के जाऊंगा, क्योंकि मैं ही उनकी बिनाई के जाने का सबब बना। ठीक है, तो कफारे वाला जो है ना ये एक अच्छी ये अच्छे अखलाक में से है। ठीक है, फिर कफारे की फिक्र की जाए, यानी कोई ऐसा अमल भी किया जाए जिससे कि। फिर आगे फरमाते हैं, काला अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु मिन अल्लाही मा ला तअलमून, यानी क्या मैं ना कह रहा था कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से वो इल्म हासिल है कि जिसकी आप लोगों को खबर नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और वो फिर मिलेंगे। ठीक है, इन्नी अअलमु मिन अल्लाही, मैं ज्यादा जानता हूं, क्या मतलब कि बस मुझे ज्यादा पता है, नहीं, मिन अल्लाही अल्लाह ताला ने, यानी अपने इल्म का क्रेडिट भी अल्लाह ताला को देना, क्योंकि मुझे खुद पता इसलिए नहीं है कि आई एम जस्ट टू स्मार्ट, आई एम अ स्मार्ट गाय, ठीक है ना, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, नहीं, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की देन है बस। ठीक है, जब अल्लाह की देन की किसी को फिक्र हो जाती है ना तो ऑटोमेटिकली उसको इसकी भी फिक्र हो जाती है कि जो देने वाला है वो ले भी सकता है, तो फिर वो इतरा नहीं सकता अपने इल्म के ऊपर, वो अपने इल्म के ऊपर यानी फरेफ्ता नहीं हो सकता, वो तकब्बुर का शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है कि देने वाला है ना किसी दूसरे ने दिया है ना भाई, ये मेरा अपनी जाती, मेरी कोई अपनी प्रॉपर्टी कोई थोड़ी है, किसी ने मुझे उधार दिया है तो उधार को तो वापस भी लिया जा सकता है ना, उधार तो वापस भी लिया जा सकता है। हाँ, रिवायती तौर पर हम कह देते हैं अल्लाह की देन है जी, हाजा मिन फजल रब्बी, रिवायती तौर पर कह रहे हैं, लेकिन दिल में ये इस एहसास नहीं है, तो ऐसे कहने का फायदा नहीं होता। जैसे वो कोठियों के ऊपर लिख के लगा दिया हादा मिन फजल रब्बी, लेकिन फजल रब्बी का ख्याल कुछ नहीं कर रहे, कोठियों के अंदर हराम काम हो रहे हैं, म्यूजिक चल रही है और उल्टी सीधी पार्टीज हो रही हैं और लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, नौकरों के ऊपर है ना पता नहीं क्या क्या ऊपर बाहर लिखा हुआ है, हादा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। तो ऐसे फजल के लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर हराम कारियों का पूरा वबाल होगा। ठीक है ना, उसी तरीके से हम रिवायती तौर पर ये तो मेरे रब का की देन है जो मेरे पास इल्म है, लेकिन दिल में ये सोच रहे हैं कि नहीं ये तो मेरे अपनी स्मार्टनेस है, तो अल्लाह ताला तो दिलों के मुताबिक मामला करते हैं ना। तो हमें दिल में ये सोचना है लाजमी तौर पर कि ये जो कुछ मेरे पास है ना ये रब का दिया हुआ है, और डरते रहना है कि बस किसी वक्त भी एक लम्हा ना लगे, एक पता नहीं किसी किस्म का कोई वायरस अगर अंदर चला जाए ना तो सारी की सारी हमारी मेमोरी जो है ना वो खत्म कर सकता है, सारी की सारे हमारे दिमाग के जो चेम्बर्स बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं ना इस वक्त, सब जो है ना वो मफलूज हो सकते हैं, दिमाग के ऊपर एक जो है वो आपका ब्रेन हैमरेज हो जाए। क्या कितना लगता है ब्रेन हैमरेज होने में, अच्छे खासे जवान जहान लोगों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है। ठीक है, तो हम जवान जहान नहीं है कि हमें नहीं हो सकता ब्रेन हैमरेज, सारी अकल सारी समझ सारा तदबीर जो है ना रफू चक्कर हो जाएगी सारी की सारी उसी वक्त। ठीक है, तो तो इन्नी आलमु मिनल्लाह, इन्नी आलम, ठीक है मैं ज्यादा जानता हूँ, तो भाई मैंने तुम्हें मशवरा देना है ना, मैंने तुम्हें गाइड करना है, तो भाई मैं ज्यादा जानता हूँ इस वजह से मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये भी कहना जरूरी है किसी बड़े को, किसी ज्यादा इल्म वाले को ये बताना भी जरूरी है कि मैं ज्यादा जानता हूँ, लेकिन मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से ही, ठीक है। आगे फरमाया, फालू या अबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातीन, कि अब जबकि हकीकत हाल वाज़ह होकर सामने आ गई, तो बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद से अपनी खताओं की माफ़ी इस शान से मांगी मांगी कि वालिद से दरख्वास्त की कि हमारे लिए अल्लाह ताला से मग़फ़रत की दुआ करें। और ये जाहिर है कि जो शख्स अल्लाह ताला से उनकी खता माफ़ करने की दुआ करेगा, वो खुद भी उनकी खता माफ़ कर देगा, ठीक है। तो इन्होंने एक ही जुमले में दोनों काम कर लिए कि उनसे भी माफ़ी मांग ली इम्प्लिसिटली, और अल्लाह ताला से एक्सप्लिसिट माफ़ी, ठीक है। वो भी कैसे कि वालिद साहब से कहा कि आप हमारे लिए दुआ करते हैं, तो वालिद साहब की इज्जत भी करी, उनके मकाम मर्तबे का भी ख्याल किया कि भाई बड़ों से ही दुआ के लिए कहा जाता है, किसी को समझा जाता है इस काबिल कि भाई आप दुआ कर दें, आपकी दुआ जो है वो कबूल होगी, तो तभी कहते हैं ना दुआ करने के लिए। मुनाफिक तो नहीं है ना ये, बहरहाल ये इनसे गलती हो गई थी, कोताही हो गई थी, लेकिन मुनाफिक नहीं थे, ठीक है। मुनाफिक क्या करता है कि दुआ के लिए भी कहता है और साथ साथ जो है ना वो अंदर से जो है वो गालियां भी दे रहा होता है। गधे को बाप बनाना पड़ता है ना आखिर, काम के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, यानी दुआ के लिए कहना पड़ता है, क्योंकि काम निकलवाना है ना इनसे, इनको जरा बटरिंग करनी है, इनकी जरा चापलूसी करनी है, खुश हो जाएंगे तो मेरा काम कर देंगे, तो इनसे दुआ के लिए कह देते हैं, ठीक है ना। वो तो मुनाफिक का ये काम होता है ना, जो ये तो मुनाफिक नहीं थे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, गलती हो गई थी, गुनाह हो गया था, वो एक अलग चीज होती है। बहरहाल काला सौफा अस्तग़फिरु लकुम रब्बी, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अनकरीब तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से माफी की दुआ करूं। यहाँ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन ही दुआ करने की बजाय वादा किया कि अनकरीब दुआ करूंगा। इसकी बजाय आम मुफस्सरीन ने ये लिखी है कि मकसूद इससे ये था कि एहतमाम के साथ आखिर शब के वक्त में दुआ करें, क्योंकि उस वक्त की दुआ खुसूसियत से कबूल की जाती है, ठीक है। तो इससे एक और चीज क्या पता चलती है कि यानी ये उस वक्त भी तो खड़े खड़े, जैसे हमने देखा ना, अपने बड़ों को भी देखा, हमने मशायख को भी देखा कि भाई दुआ के लिए कह दिया, उसी वक्त हाथ खड़े कर लिए और दुआ कर दी, ठीक है। तो वो भी सही है कि जिस वक्त दुआ के लिए कहा उसी वक्त हाथ खड़े कर लिए और दुआ कर ली, क्या ये याकूब अलैहिस्सलाम ये काम नहीं कर सकते थे? ठीक है, ऑफ कोर्स कर सकते थे, तो फिर ऐसे क्यों नहीं किया? इससे पता चलता है कि क्या इसी तरह बड़ों से दुआ की दरख्वास्त करके उनसे इनडायरेक्ट माफी मांगी जा सकती है? इनडायरेक्ट माफी मांगी जा सकती है बड़ों से दुआ की दरख्वास्त करके, डिपेंड करता है ना कि आप किस चीज के लिए, यानी आप कह रहे हैं कि जी मेरे जॉब का मसला हल हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप दुआ के लिए कह रहे हैं, लेकिन गलती तो किसी और चीज से रिलेटेड थी, ठीक है। तो यहाँ पर तो जिस चीज जो चीज जो इनकी गलती थी, उसी गलती से जो के यानी की तलाफी के लिए, उसी गलती की जो है वो माफी के लिए दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं ना, तो इट हैज टू बी यानी कंसिस्टेंट विद द मिस्टेक, ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने, हाँ, तो इससे क्या पता चलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने सारे बेटों के बारे में, ठीक है ना, बहुत सीरियस थे, बहुत सीरियस थे, और सारे बेटों की जो है ना ये कामयाबी चाहते थे, किसी बेटे को नाकाम होता हुआ नहीं देखना चाहते थे, और 100% इंश्योर करना चाहते थे कि मेरे सारे बेटे अल्लाह ताला की तरफ से मग़फूर हो जाएं, सारे बेटों को माफी मिल जाए, ठीक है। तो इस वजह से ना वो जल्दी जल्दी बस हाथ उठाए और आमीन सुम आमीन, चलो भाई चलो नेक्स्ट, अगला बंदा आ जाओ भाई आ जाओ, नहीं, ये अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, मुरीदों के साथ और शागिर्दों के साथ, हाँ भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लोग आए चले जा रहे हैं, दुआ के हजरत दुआ करते हैं, हजरत दुआ करते हैं, चलो चलो भाई अगले बंदे आओ 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 आओ, इसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक वो भी इंसान होते हैं ना, राइट। वो भी इंसान होते हैं जो मशायख इस तरह से दुआ कर रहे होते हैं, तो उनके पास एक महदूद वक्त होता है, और उनकी माशाल्लाह जो ऑडियंस होती है या उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, मुरीद होते हैं, वो हजारों की तादाद में है या सौ की तादाद में भी है, तो बहुत सारे हैं। तो इस वजह से इस तरह से करना लाजमी होता है। लेकिन औलाद तो औलाद होती है, औलाद का एक अलग मुकाम होता है ना। ठीक है, तो उनके लिए कहा कि भाई मैं जरा इत्मीनान से के साथ, तवज्जो के साथ, रुजू इलाल्लाह के साथ, और ऐसे वक्त में कि जहां पर जो है ना वो यानी कबूलियत दुआ का जो वक्त होता है। ठीक है, अच्छा कुछ जो है ना वो सालिकीन भी अपनी सिफात की वजह से, सिफात से मुराद यहाँ पर कि अपने जो उनकी संजीदगी होती है, अपने शेख के गम को गम बनाना, अपने शेख की बात को संजीदगी से लेना और उनके गम को अपना गम बनाना, ये जो मुरीद होते हैं ना, ये जो सालिकीन होते हैं ना, ये सलबी औलाद से बढ़ करके अजीज हो जाते, सलबी औलाद की फिर उनके सामने हैसियत नहीं रहती। राइट, जो बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना, ऐसे शागिर्दों के सामने उनकी भी हैसियत कम हो जाती है। ठीक है ना, उनकी भी हैसियत कम हो जाती है ऐसे शागिर्दों के सामने जो शेख के या उस्ताद के काम को अपना काम बनाते हैं और उसके गम को अपना गम बनाते हैं। ठीक है ना, तो उनके लिए भी फिर यही मामला हो जाता है, उनके लिए फिर जल्दी में दुआ करके टाला नहीं जाता उनको, चलो भी आगे चलो अगला बंदा, आगे चलो अगला बंदा, आगे चलो अगला बंदा, नहीं, उनके लिए तो फिर मुल्तजिम पर लिपट लिपट करके दुआएं मांगते हैं, काबतुल्ला के गिलाफ को पकड़ पकड़ करके दुआएं मांगते हैं, तहज्जुद में उठ उठ करके दुआएं मांगते हैं, उनके लिए तो दिल से दुआ जो है ना वो हर वक्त चलती रहती है। लेकिन उन्होंने फिर अपने अपना मुकाम बनाया होता है ना कुछ करके। ठीक है, तो सलबी औलाद की अपनी अलग अहमियत होती है और ऐसी औलाद की अपनी अलग अहमियत होती है। हमारे हजरत बड़े क्लियर हैं इस मामले के अंदर, बता चुके हैं कई दफा हम लोगों को कि ऐसे जो रूहानी ताल्लुकात होते हैं ना, इनके सामने तो अपने घर वालों की भी कोई हैसियत नहीं। हजरत खुल के अपने अल्फाज में, सराहतन अपने अल्फाज में बात हो चुकी। ठीक है, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन ही दुआ करने के बजाय वादा किया कि अन करीब दुआ करूंगा। इसकी वजह आम मुफस्सरीन ने यह लिखी है कि मकसूद इससे यह था कि एहतमाम के साथ आखिर शब के वक्त में दुआ करें, क्योंकि उस वक्त की दुआ खसूसियत से कबूल की जाती है। जैसे कि सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह ताला हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में जमीन से करीब तर आसमान पर नुजूल इजलाल फरमाते हैं और ये ऐलान करते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ मांगे तो मैं उसको कबूल कर लूं, कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे और मैं उसकी मगफिरत कर दूं। ठीक है, हदीस मुबारका के अंदर भी है और बल्कि कुरान मजीद की आयात भी हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि रात को उठ करके अल्लाह ताला से मुनाजात करते हैं। ईमान वालों की ये खसूसियत है और औलिया अल्लाह की ये निशानी बताई गई है कि तहज्जुद जो है वो पढ़ते हैं। अलबत्ता तहज्जुद के पढ़ने में इतना जरूर से ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि तहज्जुद पढ़ करके ना फिर उसके बाद फराइज से और जिम्मेदारियों से गफलत बरतना शुरू कर दें कि भाई रात को तो जाग गए तहज्जुद में और सुबह को नींद आ रही है, ना तो दफ्तर का काम सही से हो रहा है, ना घर का काम सही से हो रहा है, ना जो है वो फजर की नमाज ही पता चला कदा हो गई तहज्जुद के बाद, जो आँख लगी तो फजर ही गई। तो ऐसा तहज्जुद का, ये ऐसी तो तहज्जुद नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन तहज्जुद अगर कर सकते हैं तो उसका बहुत बड़ा फजीलत वाला मुकाम है। आज कुदरतन जो है वो किसी ने हमसे तहज्जुद के बारे में सवाल भी पूछा और मजे मजे की बातें भी बताई कि मतलब सवाल था, इल्मी सवाल जिसको कहते हैं कि भी तहज्जुद क्या हकीकत है, बता दिया भी तहज्जुद की हकीकत है, बहुत बड़ा मर्तबे वाली इबादत है और इस बात का ख्याल रखना चाहिए जैसे अभी आपके सामने बता दिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि जी ये तहज्जुद के वक्त सुना है कि अगर 40 दिन तक एक जगह पे तहज्जुद पढ़ी जाए तो, एक मिनट है जब मैं निकालता हूँ अगर वो मैसेज मिल जाता है। बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के माशाल्लाह लोगों में बातें चली हुई होती है ना। तो एक मिनट, हाँ, क्या क्या एक वक्त तय करके एक ही जगह पर मुसलसल 40 रोज तहज्जुद पढ़ने से जन्नात हावी हो जाते हैं? सही है, तो ये एक है मिथ, जिन्नात हावी हो जाता है अगर 40 दिन तक एक जगह तहज्जुद पड़ी जाए तो। क्या तहज्जुद की नमाज में हमारे पीछे भी कोई जिन्नात या फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और ऐसे अजीब अजीब वाकयात सुनने में आते हैं? बहरहाल तो आपको खाली इसलिए सुनाया कि इस किस्म के तमाशे भी लोगों ने फैलाए हुए होते हैं, तो जवाब उनको यही दिया कि नहीं, ऐसी कोई हकीकत नहीं है, कोई जिन्नात मिलात हावी नहीं होते हैं। ठीक है, फरिश्ते हावी हो जाते हैं तो वो तो अच्छी बात है कि फरिश्ते हावी हो जाए, जिन्नात तो भाग जाते हैं फिर उसके बाद। अच्छा, आगे फरमाते हैं, फलम्मा दखलू अलैहि, बाज़ रवायात में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मरतबा अपने भाइयों के साथ 200 ऊँटों पर लदा हुआ बहुत सा सामान, कपड़ों और दूसरी जरूरियात का भेजा था ताकि पूरा खानदान मिस्र आने के लिए उम्दा तैयारी कर सके। उसके मुताबिक याकूब अलैहिस्सलाम उनके औलाद और तमाम मुतअल्लिकीन मिस्र के लिए तैयार होकर निकले, तो एक रिवायत में उनकी तादाद 72 और दूसरी में 93 नफूस मर्द और औरत पर मुश्तमिल थी। यानी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली जो थी ना, बेटों के अलावा बहुएं, जाहिर है एक से ज्यादा ही शादियां करते थे उस जमाने में, तो चार की लिमिट भी नहीं थी, तो बहुएं और फिर पोते पोतियां नवासे नवासियां सब मिला मिला करके 93 माशाल्लाह। दूसरी तरफ जब मिस्र पहुंचने का वक्त करीब आया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और मुल्क मिस्र के लोग इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर लाए, बाहर तशरीफ लाए, और 4,000 सिपाही उनके साथ सलामी देने के लिए निकले। जब ये हजरत मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के मकान में दाखिल हुए तो उन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास ठहराया। यहाँ जिक्र वालिदैन का है, हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल बचपन ही में हो चुका था, मगर उनके बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने मरहूमा की बहन लैया से निकाह कर लिया था, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खाला होने की हैसियत से भी मिसले वालदा के थी। खालदा को मासी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो माँ जैसी होती है, तो माँ जैसी थी, बल्कि हदीसे मुबारक भी है, खालतो कल माई नहीं बल्कि कल क्या है, उम्मी, कल उम्मी जी, और वालिद के निकाह में होने की हैसियत से भी वालिदा ही कहलाने के मुस्तहिक थी। अच्छा, इसमें जो फुट नोट एक हजरत साहब का तुमने ही लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं कि ये तौजीह इस रवायत के मुताबिक है जिसमें कहा गया है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा बुन्यामीन की विलादत के वक्त वफात पा गई थी। इसी बिना पर यहाँ हजरत मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह की इबारत सफा 29-30 जिल्द 5 की इबारत से मुतजाद मालूम होती है, जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील को करार दिया गया है। लेकिन दरअसल इस मामले में कोई मुस्तनद रवायत तो है नहीं, इसराइली रवायात हैं और उनमें भी तआरुज है। खुद साहिब रूहुल मानी ने लिखा है कि यहूदी हजरात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा की बिन्यामीन की विलादत के वक्त इंतकाल के कायल नहीं। अगर इस रिवायत को लिया जाए तो कोई इश्काल बाकी नहीं रहता। इस सूरत में रफा रफा अबवैह में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हकीकी वालदा ही मुराद होंगी। बहरहाल इसराइली रिवायात की कोई ऑथेंटिसिटी है सच नहीं होती है, तो वालदा का इंतकाल हो गया नहीं हो गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर वे जो भी थी वो याकूब अलैहिस्सलाम की अहलिया थी और इनकी वालदा लगती हैं, सगी हो या सौतेली हो, खाला हो या सगी माँ हो। इब्ने जरीर और इब्ने कसीर ने इसी को राजा करार दिया है, चुनाचे इब्ने कसीर इस पर बहस करते हुए फरमाते हैं काला इब्ने जरीर, बस ठीक है बस। अच्छा, वकाला वकालत खुलू मिस्र इंशा अल्लाह आमिनीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब खानदान के लोगों से कहा कि आप सब बइज़्ने खुदाबंदी या बइज़्ने खुदाबंदी मिस्र में बेखौफ खतर बगैर किसी पाबंदी के दाखिल हो जाएं। मतलब ये था कि दूसरे मुल्क में दाखिल होने वाले मुसाफिरों पर जो पाबंदियां आयद हुआ करती हैं आप उन सब पाबंदियों से मुस्तस्ना हैं। तो दूसरे कंट्री में, दूसरी मुमलिकत में दाखिल होने में उस जमाने में भी कुछ ना कुछ जो है ना वो पाबंदी होती थी। वो उस जमाने में कोई पासपोर्ट्स और वीजा वगैरह का सिस्टम तो नहीं होता था, ये तो बल्कि मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ही ने लिखा है, गालबन आखिरी पारे में किसी सूरत की तफसीर में लिखा है कि ये जो वीजा और पासपोर्ट्स की जो पाबंदियां इस जमाने में लगी हैं ना, ये भी गुनाहों की वजह से लगी। ठीक है, कि हमारे जो है ना वो आमदोरफ्त दुनिया के अंदर बड़ी मुकैद हो गई है, बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, ये गुनाहों के असरात में से एक असर है। पहले ऐसा नहीं होता था, लोग सफर करते थे दूसरे दूसरे मुल्कों में, लंबी लंबी यानी इल्म के हासिल करने के लिए सफर करते, कोई वीजा की जरूरत नहीं होती थी, कोई पासपोर्ट की नहीं। फिर भी कुछ पाबंदियां जो यहाँ पे जिक्र हैं वो क्या हैं, वो ये हैं कि बस आप जब बाहर से आते थे ना तो चूंकि शहर की जो पॉपुलेशन होती थी या किले के अंदर की पॉपुलेशन कम होती थी, तो लोग ना एक दूसरे को पहचानते थे, और जो बाहर से आया हुआ होता था वो पहचान लिया जाता था कि ये यहाँ का बाशिंदा नहीं है, वो सराय में भी ठहरता था और उसकी कुछ लिबास विबास भी थोड़ा सा डिफरेंट होता था, तो वो पहचान जाते थे। तो अब उसको जो है ना, वो एज अ फॉरेनर फिर भी ट्रीट किया जाता था और थोड़ी उसकी चीजों को रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता था कि भाई कहीं दुश्मन का स्पाई ना हो, यहाँ पे आया है तो अब ये इसके साथ हमने मेहमानों जैसा सलूक करना है और वगैरह वगैरह। तो फिर कुछ ना कुछ पाबंदियां होती ही थी। ठीक है, हो सकता है कि किले के एंट्रेंस के ऊपर जो है वो उनसे कुछ हलफ वलफ उठा लिया जाता होगा कि भाई आपने यहाँ पे ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये काम नहीं करना वगैरह। जैसे सऊदी अरब में एक जमाने में आने वालों को कह दिया जाता था भाई आपने अबाया पहन करके रहना है, आपने जो है वो शो ऑफ बॉडी या शो ऑफ स्किन वगैरह यहाँ पे नहीं करना है और वगैरह वगैरह पहले कहा जाता था ना। अब तो वगैरह वरफा बवई ही अलल अर्श, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को अपने तख्त शाही पर बिठाया। वखर्रु लहू सुज्जदा, यानी वालिदैन और सब भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया, यानी वालिदैन ने भी किया और भाइयों ने भी किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया कि सजदा शुक्र अल्लाह ताला के लिए किया गया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं था। और बाज़ हजरत ने फरमाया कि सजदा इबादत तो हर पैगंबर की शरीयत में गैरुल्लाह के लिए हराम था। यानी कुछ हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला को सजदा किया। ठीक है, जैसे कि आपके माशाल्लाह वो जो गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रो वाले, क्या नाम था उनका, उनको जब फर्स्ट प्राइज मिला तो उन्होंने वहीं पे सजदा शुक्र अदा किया। हमारे क्रिकेट वाले भी करते रहते हैं, कभी और भी करते रहते हैं, तो वो अल्लाह ताला के लिए कहीं भी आप जो है वो सजदा कर दें, अरशद नदीम। तो लेकिन दूसरे हजरत ने फरमाया कि सजदा इबादत तो हर पैगंबर की शरीयत में गैरुल्लाह के लिए हराम था, लेकिन सजदा तज़ीम अंबियाए साबिकीन की शरीयतों में जायज था, जो शरीयत इस्लाम में जरिया शिर्क होने की वजह से ममनू हो गया। जैसे कि हदीस सहीहैन में मस्तूर है कि किसी गैरुल्लाह के लिए सजदा हलाल नहीं है। ठीक है, तो ये ताजीम के लिए किसी को, यानी दुनियावी एतबार से ताजीम जो है वो जायज़ होती है कि भाई आप माँ बाप की ताजीम करते हैं, तो इसका मतलब ये कि थोड़ी माँ बाप की इबादत कर रहे हैं, आप जो है वो उस्ताद की ताजीम करते हैं, शेख की ताजीम करते हैं, इवन जो है वो दुनियावी सुल्तान की जो है वो आप ताजीम कर रहे होते हैं, और ये सब जो है वो शरीयत के अंदर जायज़ है। लेकिन इस ताजीम में सजदा करना अब जायज़ नहीं है, पहले जायज़ था। तो इस वजह से ना फिर उलमाए कराम ने एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो फर्क लिखा है नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में और पिछले अंबिया की शरीयत में। पिछले अंबिया की जो शरीयत होती थी उसके अंदर गुनाह तो हराम होता था, लेकिन गुनाह तक पहुंचाने वाले जो वसाइल होते थे ना, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। ठीक है ना, जो चीजें पहुंचा सकती हैं गुनाह तक, उनके ऊपर पाबंदी नहीं होती थी, बस एग्जैक्ट गुनाह के ऊपर पाबंदी होती थी, और उसका अजाब भी अच्छा खासा कि भाई किसी ने कोई रात को गुनाह किया तो उसके बाकायदा दरवाजे के ऊपर लिख दिया जाता था। यानी इतनी स्ट्रिक्टनेस, इतनी स्ट्रिक्टनेस। ठीक है, जबकि नबी अलैहिस्सलाम के उम्मत के ऊपर ये वाली तो आसानी हो गई कि गुनाह करता है कुछ पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता सिवाय अल्लाह के या अन्नस के, वो बंदा खुद जो है वो ऐलान करे ठीक है कि मैंने गुनाह किया है, फिर वो तो बहुत ही बड़ा मसला होता है, उसको उसको तो माफी भी नहीं मिलती जो कि अपने गुनाह का ऐलान कर दे लोगों के सामने। ठीक है ना, नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है कि हर गुनाहगार मग़फ़ूर हो सकता है सिवाय उसके जो कि अपने गुनाह का ऐलान कर दे, इसका मफ़हूम एक हदीस का ये बनता है। ठीक है, अब जिसने ऐलान कर दिया ना, अब अल्लाह ताला उसके ऊपर से माफ़ी अपनी वापस ले लेते हैं, या माफ़ी की अब गुंजाइश ही नहीं है इसके लिए। क्यों क्यों, मैंने पर्दा डाला था तुम्हारे गुनाह के ऊपर, तुम जो है वो लोगों को बताते फिर रहो। ऐसे ही शख्स को फिर फासिक का लकब दे दिया जाता है, फासिक, वरना आम गुनाहगार जो होता है ना वो फाजिर होता है, फुजूर करने वाला फाजिर होता है, हर फाजिर फासिक नहीं होता। फासिक वो होता है जो कि गुनाह का ऐलान भी करे लोगों के सामने, जैसे क्लीन शेव करता है ना तो पूरी दुनिया को दिखा रहा है, देखो देखो मैंने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ऊपर जो है ना वो पानी फेर दिया है, शेव फेर दिया है, तो ये फासिक है। फिर इसी वजह से तो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में फिर वो तो आसानी कर दी गई, लेकिन जो गुनाह के वसाइल थे उन वसाइल के ऊपर पाबंदी लगाई गई। उनको हराम तो नहीं कहा गया, लेकिन उनको मकरूह तहरीमी कहा गया, और उससे जो कम दर्जे के थे, जो कि बईद थे गुनाह की तरफ पहुंचाने के लिए, थोड़े से बईद थे ना, उनको फिर मकरूह तंजीही करार दिया गया। ठीक है, तो मकरूह तहरीमी की एक कैटेगरी इस शरीयत के अंदर है और मकरूह तंजीही की कैटेगरी इस शरीयत के अंदर है। ठीक है ना, और बाकी जो उससे भी ज्यादा बड़ी चीजें हैं उनको जो है वो मुबाह करार दे दिया कि भाई ये जायज, अगरचे के देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं से, जैसे अंगूर, राइट, अंगूर जो है वो उससे आप शराब बना सकते हैं, लेकिन बहुत, यानी ये कोई थोड़ी कि हमारे घर में अंगूर है तो हम उसे शराब बनाते फिरेंगे, यानी बहुत दूर की पॉसिबिलिटी है कोई शख्स अंगूर को जो है ना वो शराब के लिए इस्तेमाल करे, तो अंगूर खाना जो है वो, अंगूर खाना, खरीदना, बेचना, ये मुबाह है, परमिसिबल है, ठीक है। पर्दा, ये पर्दा जो है औरतों के ऊपर पर्दा, ये पिछली शरीयतों में था ही नहीं, इस शरीयत के अंदर पर्दा है, क्यों? क्योंकि ये पहुंचा देने वाला है अजीम तरीन गुनाह की तरफ, तो इस शरीयत में तो पर्दा जो है वो करना बिल्कुल ही, यानी पर्दा ना करना तो हराम हो गया ना, यानी पर्दा तो करना ही है, तो फराइज में शामिल है औरत के ऊपर, ठीक है। तो असबाबे गुना, ये असबाबे गुनाह वाला जो 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 पूरा का पूरा फिलॉसफी है ना वो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर है, ठीक है। तो सजदा भी जो है उसी तरह की एक चीज है। जी, पता है, पता है आपको, पता है क्या आपको, सही। वकाल या अबती हाजा तअवीरु रुया, या यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब दोनों माँ बाप और 11 भाइयों ने बयक वक्त सजदा किया तो उनको अपना वो बचपन का ख्वाब याद आ गया और फरमाया कि अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो बचपन में देखा था कि आफ्ताब, महताब और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। रई तो ली साजिदीन वाले अल्फाज से भी यही पता चलता है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की डायरेक्शन में ही सजदा कर रहे थे, ठीक है। अब इब्ने अब्बास जो था ना, उन्होंने जब फरमाया कि यह सजदा अल्लाह के लिए था, तो हो सकता है उनका मफहूम, उनका मानी ये हो कि सजदे की डायरेक्शन तो या यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ थी, लेकिन अल्लाह ताला का ही शुक्र अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटवर्डली अपेरेंटली सूरत ये बन गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं, लेकिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर नहीं रहे थे, वो अल्लाह ही को सजदा कर रहे थे, क्योंकि उनकी नीयत यही थी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की कॉल की भी फिर एक्सप्लेनेशन इस तरह से बन सकती है, लेकिन दूसरे आजाद ने तो कहा नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ही को सजदा कर रहे थे, लेकिन वो ताजी में सजदा। अच्छा, करने वाले अम्मा अब्बा भी थे, सिर्फ भाई नहीं थे, अम्मा अब्बा। और अम्मा अब्बा की क्या मुकाम होता है, क्या मरतबा होता है, हम तो बाकायदा हुकूक वालदैन का चैप्टर जो है वो अब पढ़ना शुरू कर दिया है तमहीद के साथ, लेकिन पढ़ तो रहे ना बहरहाल। तो उसमें अलबत्ता एक हदीस जो कि ज़ईफ भी नहीं बल्कि शायद मौजूही के दर्जे में आती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से एक गलती हो गई थी एक ज़माने में, वालिद साहब के इकराम में थोड़ी सी कमी हो गई थी, तो उनकी फिर औलाद में कोई नबी पैदा नहीं हुआ, लेकिन आगे और रवायात भी हैं कि नहीं, उनकी औलाद में नबी पैदा हुए थे। अच्छा, खैर, तो अहकाम व मसाइल फिर हम उनके पढ़ने शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा वक्त भी हमारे पास है इस क्लास में। तो फरमाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने साहिबजादों की दरख्वास्त मानी और दुआए मगफिरत पर जो ये फरमाया कि अनकरीब तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करूंगा, और फौरन दुआ नहीं की, इस तखीर की एक वजह बाद हजरात ने भी बयान की है कि मंजूर ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर पहले ये तहकीक हो जाए कि उन्होंने उनकी खता माफ कर दी है या नहीं, क्योंकि जब तक मजलूम माफ ना कर दे, माफी ना दे, इंदल्लाह भी माफी नहीं होती, ऐसी हालत में दुआए मगफिरत भी मुनासिब नहीं थी। तो ये उसूल तो आपने यकीनन सुना ही होगा कि हुकूकुल इबाद जो होते हैं ना वो बंदों से बख्शवाने होते हैं, अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेंगे जब तक बंदा माफ नहीं कर देगा, लेकिन इसके ऊपर भी जो है वो 100% फुल स्टॉप नहीं है। अगर बंदा माफ नहीं कर रहा, माफी मांग रहा है लेकिन नहीं कर रहा, तो इसका वबाल जो है वो माफ ना करने वाले के ऊपर है, ठीक है ना। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है कि अगर कोई तुमसे माफी मांगे और तुम माफी ना दो तो फिर हौज़े कौसर पे आके मुझसे मत मिलना, यानी मेरा एक उम्मती तुमसे माफी मांग रहा है, वो जहन्नुम से बचना चाहते हैं, अल्लाह की नाराजगी से बचना चाहता है, और तुम कहते हो कि तुम माफ नहीं कर रहे। अब ये नहीं कहा कि तुम जहन्नुम में जाओगे, ये तो नहीं कहा नबी अलैहिस्सलाम ने, लेकिन अपनी नाराजगी तो बता दी ना कि फिर मुझसे आके हौज़े कौसर पर मत मिलना, ठीक है ना। यानी तुमने मेरे उम्मती को माफ नहीं किया ना, तो तुम भी मेरे उम्मतियों में यानी कहलाने के काबिल नहीं हो, अगरचे कि मैं तुम्हें उम्मतियों से खारिज तो नहीं कर रहा, लेकिन आई डोंट वांट टू सी योर फेस, इस तरह से कितनी बड़ी बात है ना एक मुसलमान के लिए। तो माफ कर देने की भी बहुत ताकीद है, और दूसरी बात यह कि अगर कोई ऐसी वजह बन जाए कि अब आप माफी मांग ही नहीं सकते, उससे माफी करवाए, इंतकाल हो गया उसका, या मुल्क से बाहर चला गया, अब आपकी उससे मुलाकात ही नहीं हो सकती, या ये कि औरत मर्द का मसला है कि पर्दा है, अब औरत जाकर के किसी मर्द मर्द से जो है वो माफी नहीं मांग सकती, क्योंकि पर्दे की रिस्ट्रिक्शन जो है वो फराइज में आती है ना। अब क्या करे बंदा, माफी नहीं मांग सकता, तो अब उसके लिए दुआए मगफिरत करे, उसकी तरफ से सबका खैरात करे, अल्लाह ताला से उसकी दर्जात की बुलंदी की दुआ करे, ठीक है ना। और ये दुआएं जो है ना, ये दिस इज ऑल रियल, यानी जिस तरह से माफी मांगने को हम कहते हैं ना, हाँ भी माफी मांगना, दिस इज रियल, राइट। आप वाकई किसी से जो है वो अपनी गलती के बनाने में शर्मिंदा हैं, माफी मांग रहे हैं, उसको तो हम रियल समझते हैं, यानी दिस इज नॉट फेक, दिस इज रियल। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करना, इसको हम फेक समझते हैं, इसको हम जो है ना वो अनरियल कस्म की चीज, ये कहो ये क्या बात है, अल्लाह ताला से दुआ कर दूंगा, माफी मांगने का काम है, माफी मांगो जा करके, अल्लाह ताला से दुआ करना कौन सी, ये तुमने कौन सा कमाल कर दिया, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, बल्कि दैट इज मोर रियल देन जाकर के माफी मांग। क्योंकि अल्लाह ताला से जो दुआ बंदा करता है, और इखलास से, अल्लाह ताला से क्या फेक दुआ कर सकता है कोई बंदा, अल्लाह ताला से झूठी दुआ कोई कर सकता है, झूठी दुआ तो दुआ ही नहीं होती, ऐसी तो कोई दुआ एग्जिस्ट ही नहीं करती जो कि फेक तरीके से जो है वो अल्लाह ताला से मांगी जाए, नहीं, दुआ तो दुआ होती है भाई, एक ही दो तरीका है दुआ मांगने का, बी रियल, राइट। तो जो अल्लाह ताला से दुआ मांगता है किसी के दर्जात की बुलंदी के लिए, तो अल्लाह ताला इसकी दुआ के ऊपर उसके दर्जात बुलंद करते हैं, और फिर कयामत के दिन जब उसको नजर आएगा ना कि ये उसकी दुआ की वजह से मुझे सब कुछ मिला हुआ है, तो फिर जो है ना वो माफ कर देगा, ठीक है। और फिर ऐसा भी है हदीस मुबारक के अंदर कि ऐसे बंदे को ना जिसने कि वाकई अल्लाह ताला को राजी किया होगा अपने अपने हुकूक अलबाद के मामले में, जो उससे गलतियां हुई हैं उनके ऊपर नादिम होगा, शर्मिंदा होगा, राइट, अपने आप को कसूरवार समझता होगा, तो ऐसा भी हदीस के अंदर है कि अल्लाह ताला फिर उसकी तरफ से इसको इतना देंगे, इतना देंगे जब तक ये माफ करने पर तैयार ना हो जाए। अल्लाह ताला के खजानों में कोई कमी नहीं है, अल्लाह ताला उसको इतना देंगे, यानी जिसकी इसने हक तलफी करी होगी उसको इतना देंगे कि ये माफ करके छोड़ेंगे, यानी माफ करवा के छोड़ेंगे उसको, है ना भाई। जैसे आपका बच्चा, नहीं मतलब मिसाल के लिए खाली, कि आपका बच्चा किसी का नुकसान कर दे, अब वो अंकल आ जाए और कहेंगे नहीं मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उसको सजा दिलवाऊंगा, अब आप जो है वो कोई अरबपति हैं, करोड़पति हैं, तो आप कहेंगे मैं अपने बच्चे की तरफ से आपको बेहतरीन जो है ना, मैं उसकी गलती आप बस माफ कर देना उसको, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपको वो दे दूंगा, वो कहे नहीं मैं नहीं माफ करता, मैं आपको और दे दूंगा, ये बच्चा मेरा बच्चा है भाई, आप इसको पुलिस के पास पकड़वा देंगे, आप इसको जेल में बंद करवा देंगे, मुझे मुझे बहुत दुख होगा, मैं आपको गाड़ी दिलवा देता हूँ, मैं आपको एक बंगला दिलवा देता हूँ, मैं आपको जो है वो एक शहर दिलवा देता हूँ। दुनिया के किसी अमीर के पास कोई शहर नहीं होता किसी को दिलवाने के लिए, सिवाय हमारे चंद लोगों के पास जजीरे होते हैं, लेकिन बाकी लोगों के पास सही जजीरे वजीरे नहीं होते किसी को दिलवाने के लिए, ठीक है। तो दुनिया वाले नहीं कर सकते, अल्लाह ताला के पास जजीरों की भी कमी नहीं है, शहरों की भी कमी नहीं है, मुल्कों की भी कमी नहीं है, ठीक है ना। तो जिससे अल्लाह राजी हो जाए ना, तो फिर उसको माफ करवा देना, करवाना किसी से अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, काश कि हम अल्लाह को राजी कर लें, ठीक है। बंदों को भी राजी करने की मेहनत करनी चाहिए, हलाल दर्जे में रहे, हलाल के बाउंड्रीज में रह करके, लेकिन बंदे तो फिर बंदे हैं, वो तो कभी नाराज होते हैं तो कभी फिर राजी हो भी नहीं देते, अल्लाह के साथ ऐसा नहीं, ठीक है ना। जो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता है अल्लाह ताला उससे राजी हो के रहते हैं। अच्छा आगे के ये पॉइंट मुकम्मल, ये बात, हाँ ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही और उसूली है कि हुकूक उलबाद की तौबा बगैर इसके नहीं होती कि, हाँ ये तो पढ़ लिया था, हजरत सुफियान सॉरी रहमतुल्लाहि की रिवायत है कि जब यहूदा कमी से यूसुफ लेकर आए, याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला तो पूछा कि यूसुफ कैसे हैं, उन्होंने बतलाया कि वो मिस्र के बादशाह हैं, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसको नहीं पूछता कि वो बादशाह हैं या फकीर हैं, पूछना ये है कि ईमान और अमल के एतबार से क्या हाल है, तब उन्होंने उनके तकवा व तहारत के हालात बतलाए, ये है अम्बिया अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और ताल्लुक के औलाद की जिस्मानी राहत से ज्यादा उनकी रूहानी हालत की फिक्र करते हैं, हर मुसलमान को इसी का इत्तेबा करना चाहिए, ठीक है। रूहानी हालत हमारे लिए जो है ना ये अनरियलिस्टिक कस्म की और यानी वर्चुअल कस्म की चीज है, लेकिन जो रूहानियत की हकीकत को समझते हैं ना उनके लिए यही रियल है, उनके लिए यही असल है रूहानी हालत। ठीक है, जिस्मानी मामला पे, मादी मामला पे अगर वो कभी खुशी का इजहार करते भी हैं ना, तो वो फेक खुशी होती है, या कम दर्जे के, फेक अगर ना भी हो, कम दर्जे की खुशी होती है, असल में उनको खुशी होती है रूहानी तरक्की पर। ठीक है, इसी वजह से वो इसका इसी इसका ताल्लुक जो है वो क्लास के शुरू में जो बात हुई थी उससे भी बनता है कि जो मशायख के रूहानी काम के अंदर, दीनी काम के अंदर मदद करने वाले होते हैं ना, तो उनकी फिर जो पोजीशन होती है वो जिस्मानी औलाद से भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि असल चीज ही उनके नजदीक रूहानियत होती है। चलिए यहाँ पे हमारे क्लास रोकते हैं, तरह से दुआ की बात की समझ होती तो अपनी पता फरमाए। आपको दावाना अलहमदुल्ला रबीआलमीन, सलाम वरहमत।